नमस्कार, आज हम गणित की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल।
खास तौर पर जो अध्याय है नंबर्स अप टू 10,000, मतलब 10,000 तक की संख्याएं, उस पर आज हम बात करेंगे।
जी,
हमारे पास इस अध्याय से जुड़ी काफी जानकारी है और कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो जरूरी कंसेप्ट हैं, उन्हें एक दिलचस्प बातचीत के जरिए समझा जाए।
हाँ बिल्कुल, एक बातचीत की तरह।
तो कहाँ से शुरू करें? ये अध्याय असल में हमें 3 अंकों वाली दुनिया से 4 अंकों वाली दुनिया में ले जाता है ना?
एकदम, ये एक तरह का आप कह सकते हैं लेवल अप है।
हाँ, लेवल अप सही शब्द है, जहाँ संख्याएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और शायद उनको समझना और भी मजेदार हो जाता है।
बिल्कुल, जैसा कि अध्याय के शुरुआत में ही बताया गया है, ये सफर शुरू होता है सबसे बड़ी 3-डिजिट संख्या से।
999 से।
हाँ, 999 से। देखिए, गणित में पैटर्न कितने दिलचस्प होते हैं ना। जैसे 9 में 1 जोड़ा तो 10 मिला, पहला 2-डिजिट नंबर। 99 में 1 जोड़ा तो 100 मिला, पहला 3-डिजिट नंबर।
सही।
तो उसी तरह जब 999 में 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलती है सबसे छोटी 4-डिजिट संख्या, 1000, यानी 1000।
अच्छा,
ये ऐसा है जैसे एक नया दरवाज़ा खुल गया हो, जहाँ एक नया स्थान, मतलब थाउजेंड्स प्लेस, हजार का स्थान सामने आता है।
हाँ, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि बस एक अंक बढ़ा और पूरी संख्या का स्केल ही बदल गया।
बिल्कुल।
फिर अध्याय में ये भी बताया गया है कि 1000 के बाद गिनती कैसे आगे बढ़ती है, जैसे 1001, मतलब 1001, फिर 1002, 1002।
हाँ, और ये सिलसिला चलता रहता है कहाँ तक? 9999 तक।
9999, जो कि सबसे बड़ी 4-डिजिट संख्या है।
जी, और इसी भाग में ये भी सीखते हैं कि संख्याओं को अंकों में, मतलब न्यूमेरल्स में, जैसे 2007, और शब्दों में, यानी नंबर नेम्स में, जैसे 2007, दोनों तरह से लिखना कितना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत अहम है।
बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आता है एबकस। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया।
हाँ,
एबकस,
वो एबकस की बीच से खेलना, ये वाकई संख्याओं को सिर्फ पढ़ने की बजाय देखने और एक तरह से महसूस करने का एक शानदार तरीका है।
सही कहा। अध्याय में बताया है कि 4-डिजिट नंबर्स के लिए एबकस में 4 रॉड्स होती हैं। दाहिने से बाएं चलें तो वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स।
बिल्कुल सही, ओ टी एच और टी। और ये सिर्फ गिनती का उपकरण नहीं है, जैसा आपने कहा, ये प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे समझने में कमाल की मदद करता है। जैसे अध्याय में उदाहरण दिए हैं, मान लीजिए 4538 है,
ठीक है।
तो इसे एबकस पर दिखाने के लिए वंस रॉड पर 8 बीड्स डालेंगे, टेंस पर 3, हंड्रेड्स पर 5 और थाउजेंड्स पर 4 बीड्स।
अच्छा, तो हर रॉड पर बीड्स की गिनती उस जगह के अंक को दिखाती है।
एकदम, संख्या की पूरी बनावट आंखों के सामने आ जाती है। जैसे 4328 या 6523 के उदाहरण भी दिए हैं, इनसे ये बात और पक्की हो जाती है। ये विजुअलाइजेशन, मतलब देखकर समझना, गणित को रटने की जगह समझने में मदद करता है।
सही बात है।
अच्छा, एबकस से संख्या की बनावट समझी, अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो मुझे लगता है इस अध्याय की जान है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये शब्द सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है, और मैंने देखा है कि अक्सर यहीं थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, अक्सर होती है। देखिए, फेस वैल्यू तो बहुत ही सीधा साधा है।
अच्छा।
हाँ, किसी अंक का फेस वैल्यू वो अंक खुद ही होता है, चाहे वो संख्या में कहीं भी हो। जैसे मान लीजिए संख्या है 5836,
ठीक है,
इसमें 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। ये उस अंक की अपनी पहचान है, उसका चेहरा है जो बदलता नहीं।
ये तो आसान लगा। तो फिर प्लेस वैल्यू इतना खास क्यों है? क्या फेस वैल्यू का कोई असल इस्तेमाल है, या ये सिर्फ प्लेस वैल्यू समझाने के लिए एक एक स्टार्टिंग पॉइंट है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फेस वैल्यू की जरूरत अंक को पहचानने के लिए तो है ही, लेकिन संख्या का असली मान, उसकी कीमत, वो तो प्लेस वैल्यू से ही पता चलती है।
अच्छा।
प्लेस वैल्यू, जैसा कि अध्याय में विस्तार से समझाया गया है, अंक की जगह यानी उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। वो वंस पर है, टेंस पर है, हंड्रेड्स पर है या थाउजेंड्स पर। उसी उदाहरण को फिर से लेते हैं, 5836, इसमें 6 इकाई वंस के स्थान पर है तो इसका प्लेस वैल्यू हुआ 6 × 1 यानी 6।
ठीक है।
3 दहाई टेंस के स्थान पर है तो प्लेस वैल्यू हुआ 3 × 10 यानी 30। 8 सैकड़ा हंड्रेड्स के स्थान पर है तो प्लेस वैल्यू हुआ 8 × 100 यानी 800।
800।
और 5000 थाउजेंड्स के स्थान पर है तो प्लेस वैल्यू हुआ 5 × 1000 यानी 5000। तो 5 का फेस वैल्यू तो 5 ही है पर प्लेस वैल्यू 5000 है।
बिल्कुल,
यही अंतर है जो संख्या के मैग्नीट्यूड मतलब उसके आकार या मान को समझने की कुंजी है।
समझ गया।
और ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ बड़ी संख्याएं लिखने के लिए ही नहीं है, ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है वो कैसे 10-10 के समूह पर आधारित है।
हाँ, ग्रुप्स ऑफ 10।
जी, ये समझ आगे चलकर डेसिमल, मेट्रिक सिस्टम और यहाँ तक कि पैसों का हिसाब किताब जैसी चीजों को भी आसान बनाती है।
वाह, मतलब प्लेस वैल्यू सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये तो हमारे नंबर सिस्टम की नींव है।
बिल्कुल।
और अगर प्लेस वैल्यू समझ आ गया तो फिर एक्सपैंडेड फॉर्म समझना तो वो तो बिल्कुल आसान हो जाता है।
हाँ, अध्याय में भी इसका सीधा कनेक्शन दिखाया है।
हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
जैसे 6728 को लिख देना 6000 प्लस 700 प्लस 210 प्लस 81s, या फिर 6000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 8। ये तो बस संख्या को उसके प्लेस वैल्यूज के हिस्सों में तोड़कर लिखना हुआ है ना।
एकदम सही। एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब संख्या को खोलकर या विस्तार से लिखना, उसके हर अंक की असली कीमत दिखाते हुए।
अध्याय में 4050 का उदाहरण भी अच्छा है। यहाँ हंड्रेड्स और वंस की जगह पर शून्य है।
हाँ, जीरो है।
तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? 4000 प्लस 0 hundreds प्लस 5 tens प्लस 0 ones। या सीधे लिख दें तो 4000 प्लस 50।
अच्छा,
ये दिखाता है कि शून्य की भी अपनी जगह है और प्लेस वैल्यू में उसका महत्व है। वो जगह खाली नहीं है, वहां शून्य है।
हाँ, ये जरूरी है।
और इसी तरह अगर एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हो जैसे 9000 प्लस 400 प्लस 8, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए।
हाँ, वो हो जाएगा 9408। यहाँ समझना होगा कि टेंस की जगह कुछ नहीं है, मतलब शून्य है।
बिल्कुल,
9408।
ठीक है, तो हमने संख्या बनाना सीखा, एबकस पर देखा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का गहरा मतलब समझा और एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना भी जान लिया। अब अगला लॉजिकल स्टेप है संख्याओं की तुलना करना। कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी?
हाँ, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स।
इसके लिए अध्याय में कुछ नियम बताए गए हैं। जी, पहला नियम तो काफी सीधा है, जिस संख्या में ज्यादा अंक हो मतलब ज्यादा डिजिट्स हो वो बड़ी होती है।
अच्छा,
जैसे कोई भी 4-digit संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1000 ही, वो हमेशा किसी भी 3-digit संख्या जैसे 999 से बड़ी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं।
हाँ, ये तो साफ है।
मजा तब आता है जब अंकों की संख्या बराबर हो, मतलब दोनों ही 4-digit हो। ये रूल 2 है।
हाँ, तब क्या करते हैं?
तब हमें थोड़ा व्यवस्थित होना पड़ता है। हम सबसे बाएं अंक से मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट से तुलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वही सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू रखता है, थाउजेंड्स का।
हाँ, सही।
अध्याय का उदाहरण लें, 6752 और 5992 दोनों 4-digit है।
ठीक।
हम थाउजेंड्स के स्थान को देखेंगे, एक में 6 है, दूसरी में 5 है।
हाँ।
अब क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो बस फैसला हो गया, 6752 बड़ी है 5992 से।
अच्छा, आगे के अंक देखने की जरूरत नहीं पड़ी?
बिल्कुल नहीं, पहले ही अंक पर फैसला हो गया।
और अगर अगर पहला अंक भी एक जैसा हो, जैसे अध्याय में एक और उदाहरण है 3272 और 3248, यहाँ थाउजेंड्स पर भी 3 है और हंड्रेड्स पर भी 2 है। अब
हाँ, अच्छा सवाल है। तो हम बस एक कदम दाहिनी ओर बढ़ जाते हैं, मतलब अगले प्लेस वैल्यू पर।
अच्छा, हंड्रेड्स के बाद टेंस पर।
बिल्कुल, यहाँ हम टेंस के स्थान के अंकों को देखेंगे, एक में 7 है, दूसरी में 4 है।
हाँ,
क्योंकि 7 4 से बड़ा है इसलिए 3272 बड़ी है 3248 से।
समझ गया।
अध्याय यही बताता है कि ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक हमें अलग अलग अंक न मिल जाएं। अगर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और टेंस तीनों एक जैसे होते तो हम आखिर में वंस के स्थान की तुलना करते। ये जो व्यवस्थित तरीका है ना तुलना करने का, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्याओं के साथ अंदाजा नहीं लगा सकते। एक पक्की विधि चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तुलना वाले नियम तो एकदम साफ हो गए। अब दो और शब्द हैं जो अक्सर गणित में सुनाई देते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अध्याय में इनका भी जिक्र है।
हाँ, ये भी प्लेस वैल्यू और गिनती से ही सीधे जुड़े हुए हैं। सक्सेसर का मतलब है किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या, मतलब जस्ट आफ्टर।
अच्छा, अगला नंबर।
हाँ बिल्कुल अगला। इसे पाने के लिए हम संख्या में बस एक जोड़ देते हैं, जैसे 2500 का सक्सेसर हुआ 2501,
ठीक,
और 8999 का सक्सेसर
9000।
बिल्कुल। और प्रीडेसेसर का मतलब है ठीक पहले आने वाली संख्या, जस्ट बिफोर।
पहले वाला।
हाँ, इसे पाने के लिए हम संख्या में से एक घटा देते हैं, जैसे 5678 का प्रीडेसेसर हुआ 5677,
ठीक है,
और 2000 का प्रीडेसेसर,
वो होगा 1999।
एकदम सही। और अध्याय में एक छोटी सी पर रोचक बात भी बताई है, शून्य जीरो का कोई होल नंबर प्रीडेसेसर नहीं होता।
हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है।
और जाहिर है, अगर हमें संख्याओं की तुलना करनी आती है और सक्सेसर प्रीडेसेसर पता है तो हम उन्हें क्रम में भी लगा सकते हैं,
बिल्कुल।
यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अध्याय का अगला हिस्सा है। जी, असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम बढ़ता क्रम भी कहते हैं, उसका मतलब है संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना।
छोटे से बड़ा।
हाँ, जैसे अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हों, मान लीजिए 5738, 2798, 6775 और 3201,
ठीक है,
तो इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे छोटी पहले 2798, फिर 3201, फिर 5738 और आखिर में 6775।
समझ गया।
और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम, इसका ठीक उल्टा है, संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लगाना।
बड़े से छोटा।
हाँ, उन्हीं संख्याओं का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे बड़ी पहले 6775, फिर 5738, फिर 3201 और अंत में 2798।
अच्छा,
ये दोनों ही काम करने के लिए हमें वही तुलना वाले नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले सबसे छोटी असेंडिंग के लिए या सबसे बड़ी डिसेंडिंग के लिए संख्या चुनते हैं, फिर जो बची हैं उनमें से चुनते हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं।
हाँ, मतलब कंपैरिजन रूल्स यहाँ भी काम आते हैं।
बिल्कुल, उन्हीं पर आधारित है।
तो संख्याओं को समझना, तुलना करना, क्रम में लगाना, ये सब हो गया। अब अध्याय का अंत एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं ऐतिहासिक चीज से होता है, रोमन न्यूमरल्स।
हाँ, रोमन न्यूमरल्स।
ये मुझे हमेशा थोड़े रहस्यमयी से लगते थे, खासकर पुरानी इमारतों पर या घड़ियों पर लिखे हुए। अध्याय बताता है कि ये आज भी इस्तेमाल होते हैं।
हाँ, होते हैं। ये असल में अंकों को लिखने का एक प्राचीन रोमन तरीका है। हम जो 0, 1, 2, 3 इस्तेमाल करते हैं, उसे हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं।
अच्छा,
रोमन्स का तरीका अलग था। उनके पास 7 मुख्य प्रतीक थे, मतलब सिंबल्स, जैसा कि अध्याय में दिया है। आई, जिसका मतलब है 1,
हाँ,
वी मतलब 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000।
IVXLCDM, 7 सिंबल्स।
जी
और इन्हें मिलाकर संख्याएं बनाने के कुछ नियम हैं जो अध्याय में समझाए गए हैं।
हाँ, नियम तो होंगे ही। पहला नियम, आई और एक्स जैसे प्रतीकों को दोहराने का मतलब है उन्हें जोड़ना। जैसे आई आई मतलब 1+1=2, एक्स 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 मतलब 10+10+10=30। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी प्रतीक 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जाता।
अच्छा, 3 बार तक ही।
हाँ। दूसरा नियम, अगर छोटे मान वाला प्रतीक बड़े मान वाले प्रतीक के दाहिनी ओर मतलब राइट साइड पर आता है तो मान जुड़ जाते हैं।
जैसे
वी आई मतलब वी के दाईं ओर आए तो 5+1=6, एल एक्स मतलब एल के दाईं ओर एक्स तो 50+10=60, एम सी मतलब एम के दाईं ओर सी तो 1000+100=1100।
ठीक है, जोड़ने वाला नियम।
हाँ, तीसरा नियम, और यही वो नियम है जो थोड़ा ध्यान मांगता है, अगर छोटा मान वाला प्रतीक, और ये सिर्फ आई एक्स या सी हो सकते हैं, बड़े मान वाले प्रतीक के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड पर आता है तो छोटे का मान बड़े में से घटाया जाता है।
अच्छा, घटाने वाला नियम।
जी, जैसे आई वी, यहाँ आई वी के बाईं ओर है तो ये 5-1=4 हुआ। इसीलिए 4 को आई नहीं लिखते।
हाँ, ये गड़बड़ हो सकती है।
बिल्कुल। इसी तरह आई एक्स मतलब 10-1=9, एक्सएल मतलब 50-10=40, सी एम मतलब 1000-100=900। और एक जरूरी बात जो अध्याय में बताई गई है, वी एल और डी यानी 5, 50, 500 वाले प्रतीक, इनको कभी घटाया नहीं जाता, मतलब ये कभी किसी बड़े प्रतीक के बाईं ओर नहीं लिखे जाते।
अच्छा, VLD को बाईं ओर नहीं लिखना है घटाने के लिए?
जी नहीं।
ये नियम खासकर तीसरा वाला शुरुआत में थोड़ा अभ्यास मांगता है ना?
हाँ बिल्कुल, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। पर अच्छी बात यह है कि अध्याय में 1 से 39 तक के रोमन न्यूमरल्स की पूरी लिस्ट दी गई है।
हाँ मैंने देखा।
उसे देखने से ये नियम कैसे काम करते हैं ये समझना आसान हो जाता है। जैसे 24 को XXVI लिखा जाता है, मतलब 10+10+5-1, या 39 को XXXIX, 10+10+10+10-1। बिल्कुल। और रोमन न्यूमरल्स लिखते वक्त सबसे आम गलतियों में से एक यही होती है कि IV की जगह III लिख देना या IX की जगह VIII लिख देना। वो घटाने वाला नियम लोग भूल जाते हैं।
हाँ।
या फिर 40 के लिए XXX लिख देना, जबकि XL सही है। ये नियम थोड़े अलग हैं हमारे सिस्टम से, इसलिए ध्यान देना पड़ता है।
सही है। और हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि इस अध्याय में हर कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइजेस दी गई हैं।
हाँ, अभ्यास बहुत जरूरी है।
सोचने पर मजबूर करने वाले मेंटल मैथ सवाल हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs भी हैं,
जी,
और यहाँ तक कि एक मैथ्स लैब एक्टिविटी भी दी गई है। इन सब का मकसद साफ है, जो सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखना और अपनी समझ को मजबूत करना।
बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जैसा कहते हैं।
तो ये थी 10,000 तक की संख्याओं वाले अध्याय की हमारी, क्या कहेंगे, एक तरह की गहरी पड़ताल।
हाँ, एक ओवरव्यू।
हमने देखा कि कैसे 3 डिजिट से 4 डिजिट पर जाते हैं, एबकस कैसे संख्याओं को दिखाता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या महत्व है,
खासकर प्लेस वैल्यू का,
जी
वो बहुत अहम है,
एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे बनता है, संख्याओं की तुलना और क्रम में कैसे लगाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होते हैं, और अंत में रोमन न्यूमरल्स की दिलचस्प दुनिया की एक झलक भी देखी।
हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स गणित की इमारत के बहुत जरूरी पत्थर हैं, खासकर प्लेस वैल्यू की गहरी समाज और संख्याओं को तुलना और क्रम में लगाने की जो क्षमता है, ये आगे की कक्षाओं में बड़े नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और जो जटिल गणनाएं आती हैं उनको समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं।
सही बात है।
और रोमन न्यूमरल्स हमें ये भी दिखाते हैं कि संख्याओं को देखने और लिखने के और भी नज़रिए हो सकते हैं जो हमारे अपने सिस्टम से कितने अलग थे।
बिल्कुल, ये नींव जितनी मजबूत होगी, गणित का आगे का सफ़र उतना ही आसान और मज़ेदार होगा।
बिल्कुल।
अच्छा, अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं
जो इसी अध्याय से जुड़ा है।
हाँ ज़रूर। हमने रोमन न्यूमरल्स के नियम देखे, खासकर जोड़ने और घटाने वाले, और ये भी देखा कि M का मतलब 1000 होता है।
जी।
अध्याय में 39 तक के उदाहरण हैं।
जी।
क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोमन्स बहुत बड़ी संख्याएं जैसे 4000 या 5000 या मान लीजिए 10,000 कैसे लिखते होंगे?
दिलचस्प सवाल है।
क्या यह सिस्टम बड़ी संख्याओं के लिए उतना ही सरल और कारगर रहा होगा जितना हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम है? इन नियमों के आधार पर जरा सोचिएगा इस पर।
हाँ, सोचने वाली बात है।